તારીખ 10/7/1997 ડાયરીના બોલ નંબર 674 અને 675 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 85
ચૈતન્ય કા રણકાર હોતા હૈ
જી
રણકાર હિન્દીમાં ચલતા હૈ રણકાર શબ્દ નહીં ચલતા હૈ જો પ્રગતિ કો पछाड़ करके जो आवाज निकलता है ना उसको क्या बोलते हैं रणकार। ज्ञानी पुरुष की वाणी में चैतन्य का रणकार होता है
जी।
जो चैतन्य स्वरूप का परिणमन है उस परिणमन का प्रभाव वाणी में आता है। यानी ज्ञानी पुरुष की वाणी चैतन्य के परिणमन से प्रभावित होकर के निकलती है
जी।
और यहाँ से ज्ञानी पुरुष पहचाना जाता है। अगर पहचानने की योग्यता होती है तो पहचानने की योग्यता नहीं होती है तो पहचाना नहीं जाता। जो पदमचंद जी का चिट्ठी आया है वो लिखते हैं कि ज्ञानी पुरुष के वचन आगम से मेल खाते हैं तो स्वीकार आता है। तो इस प्रकार से स्वीकार करना ठीक है या नहीं है उन्होंने प्रत्युत्तर लिखा कि ज्ञानी पुरुष के वचन को स्वीकार करके फिर मिलान करना क्या आगम से मिलान करके स्वीकार नहीं करना। उनका क्या पद्धति है तो कोई भी ज्ञानी पुरुष के वचन को आगम से वो मिलान करते हैं। अगर मिलान कभी नहीं होता है तो फिर परिणाम में गड़बड़ होने लगती है। कैसे कैसे कहते हैं आगम में तो वो बात है नहीं। तो हम आगम में बात नहीं है ऐसे कहने वाले को ये पूछते हैं कि क्या आपने सभी आगम पढ़ा है क्या। जैन दर्शन के जितने आगम है वो सब पढ़ चुके क्या। अच्छा अगर पढ़ा हो तो भी जितने उपलब्ध है वो पढ़ा है तो विच्छेद गए वो कहाँ से पढ़ेंगे। जैन दर्शन के आगम तो बहुत से हैं उसमें कुछ रहे कुछ नहीं रहे हैं तो आगम का पूरा ज्ञान तो किसी को अभी हो ही नहीं सकता क्योंकि सभी आगम तो मौजूद नहीं है। अब जो भी है उपलब्ध है प्राप्य है वो भी पूरा पूरा कोई कोई पढ़ते कोई रेयर केस में किसी ने पढ़ा हो तो और पढ़ा हो तो भी सभी बात स्मृति में रहे दिमाग में रहे वो बात भी संभव नहीं है। फिर आप कैसे कहोगे कि ये वचन का आगम से मिलना मेल नहीं खाते। तो ये बात पत्र में तो लंबी थोड़ी नहीं लिखी जाती रूबरू में तो बोल सकते हैं कि देखो आप कैसे पद्धति की पद्धति कहाँ से ठीक है। लेकिन ज्ञानी है तो उसको पहचान करके इसका वचन स्वीकार कर लेना
जी।
फिर आगम से मिलान करना नहीं मिले तो भी ठीक है मिले तो भी ठीक है मिले तो प्रमोद आएगा बहुमान आएगा नहीं मिले तो कोई बात नहीं है क्योंकि वचन ही आगम है। ज्ञानी के वचन ही आगम है क्यों क्योंकि जितने भी आगम है वो आत्मा में से निकले। आगम की उत्पत्ति कहाँ से हुई आत्मा में से और ज्ञानी के वचन की उत्पत्ति कहाँ से हुई? आत्मा में से। तो दोनों का जन्म स्थान तो एक ही है, इसलिए दोनों आगम है। ज्ञानी के वचन को आगम बोलने में आता है।
ज्ञानी पुरुष ना वचन नो स्वीकार करा पछी आगम साथे मेळवा जाए तो शास्त्र संज्ञा में,
तो शास्त्र संज्ञा है, वो लिखा था हमने, तो शास्त्र संज्ञा है। तो बोलो कि इसमें क्या है, मिलान करे तो उसमें अनादर कैसे होता है? तो फिर अब दोबारा इधर से समझाया कि पहले स्वीकार करो फिर मिलान करो, मिलान करके स्वीकार करने की बात छोड़ो। अगर ऐसा करोगे तो कोई भी विद्वान को, अच्छे विद्वान को आपको ज्ञानी मानना पड़ेगा, क्योंकि उनकी सब बात आगम से मिलती है। जो भी वो जितना भी बोलता है उतना आगम से मेल खाता है, तो ज्ञानी मानना पड़ेगा। वो बात भी सही नहीं, ठीक नहीं। देखो इतने साल बाद इतना पढ़ा है, इतना सुना है, खुद ही प्रवचन देने को जाते हैं, लेकिन विचार में क्या कहाँ फर्क पड़ता है, समझ में कहाँ फर्क पड़ता है। आदि चिट्ठी है
अपने अनुभव से नई बात भी तो बता सकते हैं,
बराबर बता सकते, क्यों नहीं बता सकते, बराबर बता सकते।
बात नहीं आ रहा, मैं लिख लू अपने अनुभव से।
हाँ बता सकते हैं, ठीक है
जी।
कोई आपत्ति नहीं।
इंग्लिश से वैसे बम्बई भेजी थी उन्होंने आपके लिए, एक एक बम्बई भेजी थी आपके लिए उन्होंने।
हाँ उसका जवाब हमने हरीश भाई के साथ भेजा था, उसका जवाब भी आया कि हरीश भाई द्वारा आपके जो चिट्ठी आई है तो मेरे समझ में कुछ बातें नहीं आती है, तो मेरे ऐसे प्रश्न ऐसे करके लंबी थोड़ी चिट्ठी आ जाएगी, पोस्ट में आई है, 7 तारीख की लिखी हुई, 10 तारीख को आगरा की 7 तारीख की चिट्ठी 10 तारीख को पहुंच गई।
वैसे
ऐसा होता था, हम लोग देखना चाहिए, हमने पढ़ा हो रक्षक तंत्र को देखना चाहिए, जब प्रवृत्ति में इतना हस्ते हैं उसको हमें देखना चाहिए, तो उसका निषेध कर दे रहे। उसमें उसका क्या आर्गुमेंट है? उस पत्र में भी था, इस पत्र में था, तो परिणाम तो समय समय के होते हैं, और छद्मस्थों को तो अनंत समय जाने के बाद पता चलता है ये मेरे परिणाम हम हैं, तो वो तो होगी, वो तो व्यय होगी है, इसको देख करके क्या करेंगे। तो ये समय समय के परिणाम वाली बात केवल लिखी है, सब वस्तु को तो समय समय पकड़ में नहीं आता, उसको तो क्षण क्षण पकड़ने में आता है, तो चलते हुए परिणामों को देखे, कालु क्षण में ही देखे, इसमें क्या आपत्ति है। और परिणामों को नहीं देखेंगे तो अपने भावों का परिचय नहीं होगा, भावों का परिचय नहीं होगा तो भावों का भाव भाषण नहीं होगा, भावों का भाव भाषण नहीं होगा तो भेद ज्ञान नहीं होगा, और भेद ज्ञान नहीं होगा तो अनुभव नहीं होगा। क्या करोगे, और तो कोई पद्धति है ही नहीं।
कोई बात जवाब
नहीं वो लागू नहीं पड़ता है।
बोला तो बोले कि गुरुदेव ने मेरे को दिया था एक बार, बोले कि गुरुदेव ने मेरे को प्रकाश दे
दिया,
योग्यता
मान्य थे। हाँ ठीक है, तो आपकी योग्यता अच्छी है, उसमें कोई सवाल नहीं है। लिखते हैं कि मेरा शेष जीवन मैं आत्म कल्याण में लगाना चाहता हूँ, तो भावना तो अच्छी है, योग्यता अच्छी है, लेकिन जो समझ में कुछ गड़बड़ हो उसको तो दूर करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी।
इसमें क्या परिणाम की चर्चा आपके द्वारा अभी भी शुरू हुई, उनको इतना ख्याल नहीं है, वो आपका समागम होगा तो वो ठिकाने आ जाएंगे।
ऐसा बिल्कुल समागम नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन
इतना नहीं है,
जो पहले से जो पक्का कर लिया है, निश्चय कर लिया है, पूर्वग्रह को छोड़ नहीं सकते।
बिल्कुल
तो बार बार इधर आते हैं, भानु घर आते हैं, निवृत्ति क्षेत्र में भी आ जाते हैं, हम भी आगरा जाते हैं तो बात करते हैं, बैठते हैं, तो कोई नया तो नहीं है हमारे परिचय में, पुराने हैं। लेकिन उसका जो पूर्वग्रह है, अपनी सोची हुई बात है, उसको छोड़ नहीं सकते। तो जहाँ तक पूर्वग्रह है तो नई बात को स्थान मिलने का जगह तो है नहीं, अवकाश तो है नहीं, खाली जगह नहीं है तो नई बात रहेगी का
भाई,
तो भर दिया है, पहले से ही भर दिया है गड़बड़, वो तो नया प्रॉब्लम हो गया इनके लिए। तो
ऐसे संपर्क में इतने मूल दिगंबर नहीं है कि पालु देखते संपर्क में इतने मूल दिगंबर नहीं थे,
मूल दिगंबर में क्या फर्क है,
हमने बोला वैसे ने बोला अपन लोग तो मुसलमान जाते हैं।
मूल दिगंबर को तो क्या है कि देव गुरु शास्त्र के विषय में समझाना नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो उसी कुल में आया है जहाँ सच्चे देव गुरु शास्त्र है। फिर भी मुनियों का स्वरूप तो समझाना पड़ता है, क्योंकि जो वर्तमान मुनि है वो सही नहीं है, तो आगम के अनुकूल उनके परिणाम नहीं है, आगम विरुद्ध है, तो वो तो समझाना पड़ता है। बाकी ऐसे ही योग संज्ञा से तो सब मानते हैं कि हमारे देव गुरु शास्त्र सच्चे हैं, लेकिन पहचान करके जब तक नहीं माने वहां तक तो अन्य मते और दिगम उम्र में कोई फर्क तो है नहीं, नहीं रहा। पहचान होनी चाहिए कि सर्वज्ञ कैसे होते हैं, इसका स्वरूप क्या होता है, इसका परिणमन कैसा होता है, शास्त्र सिद्धांत क्या होता है, इसमें विपर्यास क्या है और विपर्यास क्या है, ये सब जाने नहीं, तो देव गुरु शास्त्र का स्वरूप तो पता नहीं, दिगंबर और गैर दिगंबर में क्या फर्क रहा, तो कोई फर्क नहीं रहा। तो सब अपने अपने संप्रदाय को सही मानते हैं, सत्य मानते हैं, और ऐसे मानने से थोड़ा सत्य हो जाता है, सत्य कैसे सत्य है ऐसा समझे तो सत्य को स्वीकार किया, वरना तो कहने मात्र रह गया सबको। हाँ, प्रद्योम जी ने पूरा अध्याय इसके ऊपर लिखा है, जैना भाषी मिथ्या दृष्टियों का स्वरूप, ऐसा करके जैनियों के लिए लिखा है, दिगंबरों के लिए लिखा है उन्होंने, बाकी स्वतंबर के लिए दूसरा प्रकरण लिखा, तो उसको तो अन्य मत में डाल दिया कि ये तो जैन है ही नहीं, वो तो नाम जैन है बाकी वास्तव में जैन है ही नहीं, क्योंकि ये तो सुभाव से धर्म मानते हैं। दूसरे जो अजैन है वो भी शुभ भाव से धर्म मानते हैं, तो स्वतंत्र में अध्यात्म छूट गया, क्योंकि वो तो ग्रहित मिथ्या दृष्टि होने के बाद ही शास्त्र बनाए और सारा ग्रहित ही चला, तो दूसरे अन्य मत वाले ग्रहित है वो भी ग्रहित है, नाम जैन का रहा, तो उनको तो अजैन के प्रकरण में लिखा उन्होंने। जैन के प्रकरण में जो दिगंबर है उसको उसकी क्या गड़बड़ है, वही लिखा है, तो उसमें नीची योग्यता वाले को लिखा, ऊंची योग्यता वाले को लिखा, किसको लिखा, क्या बात है उसमें, है क्या बात है।
आगम तो सब पहले हो चुके हैं, वर्तमान में जो मुनिराज होते हैं, वर्तमान में जो सतगुरु होते हैं, वो तो वर्तमान स्थिति को देख करके जो भी बोलते हैं वो सब बात उसमें कारण विभिन्न है।
हाँ, वो तो मिलेगी,
कल वैसे आने वाले थे साथ में, हम लोगों के साथ आने वाले थे, उनको तबीयत खराब हो गया बहुत,
अच्छी बात है। हम भी दो तीन बातों में तो ऐसे ही लिखते हैं कि रूबरू में चर्चा करेंगे, रूबरू में चर्चा करेंगे, तो सब बात पत्र में लंबी चौड़ी कैसे लिखी जाए। શાસ્ત્ર માનજો એમ કેમ તમારા આત્મામાંથી આ વાત નીકળે છે, સાધના માંથી નીકળેલી વાત છે, આગમ પણ સાધકો એ લખેલા છે, વાત તો એક જ થઈ ગઈ. તો પરિણામ કા અવલોકન કા ઇતના લંબા ચોડા પ્રકરણ હૈ, ચિઠ્ઠી મેં લિખે કેસે કે ક્યા ક્યા ઇસમે ફાયદા હોતા હૈ. અબ અવલોકન તો કરતે નહીં, તો અવલોકન કા તો પ્રયોગ કા વિષય છે, બિલકુલ અંધેરે મેં હૈ. અવલોકન કી બાત આવે તો ઉસકો નિષેધ કરતે હૈ, ન પ્રયોગ કરતે હૈ ન પ્રયોગ કા સ્વીકાર કરતે હૈ. જો પ્રેક્ટિકલ નોલેજ હૈ વો તો હોય ગયા નહીં. અબ પઢ પઢ કે જો મુખપાઠ રહે ગયા ઉસકા રટન કર લેતે હૈ, પરિણામ કો ધ્રુવ મેં લગા દેના, પરિણામ કો ધ્રુવ મેં લગા દેના, પરિણામ કો ધ્રુવ મેં લગા દેના, એસે થોડા લગતા હૈ. યે તો વિકલ્પ હો ગયા, કે વિકલ્પ સે થોડા કામ હોતા હૈ. વોહી વાત ચલ રહી હૈ. હમારે જો મનુષ્ય તો કાર્ય પદ્ધતિ મેં તો સમજતે નહીં, પદ્ધતિ સે કામ હોતા હૈ. દૂસરા જૈસે દૂસરે નહીં સમજતે, હમારે મનુષ્ય ભી નહીં સમજતે. દૂસરા જો ભી ગ્રંથ મિલા પટ ડાલો, જો ભી ગ્રંથ હાથ મેં આયે નયા પ્રકાશન આયા પટ ડાલો, પટ ડાલો બસ. ફિર ક્યા હૈ કે પૂર્વગ્રહ બના લેગા, ઇસમે એસા લિખા હૈ ઉધર એસા લિખા હૈ ઇધર એસા લિખા હૈ ઉધર એસા લિખા, તો નિકાલને કે નહીં સમસ્યા હો જાયેગી. જો ભી પૂર્વગ્રહ હો ગયા ઉસકો નિકાલના મુશ્કિલ હો જાયેગા ના, તો યે હાલત હો ચુકી સબકી. इस रणकार से आत्मा में अपूर्वता लगे और साथ साथ पुरुषार्थ चालू हुए उपड़े, गुजराती में आप प्रश्न हुए उपड़े, पुरुषार्थ का उत्थान हो जाए तो स्वरूप समीपता हो जाए. तो स्वरूप समृद्धता होकर के जन्म मरण का नाश हो जाए. क्या अनुसंधान दिया? ज्ञानी के सानिध्य में ज्ञानी पुरुष की वाणी बाणी के रणकार से सुनने वाले को अगर अपूर्वता लगे और उसका पुरुषार्थ चालू हो जाए तो उसको स्वरूप समीपता हो करके जन्म मरण का नाश हो जाएगा. ऐसा अमृत, जन्म मरण को नाश करने वाला अमृत ज्ञानी की वाणी में भरा हुआ है. इसलिए ही ज्ञानी की वाणी को वचनामृत कहने में, वचन नहीं कहते हैं, वचनामृत कहते हैं. वचन अमृत, वचन रूपी अमृत. यह फालतू का शब्द अलंकार नहीं है, ये केवल शब्द अलंकार नहीं है. चलो यानी के वचन को चढ़ा बढ़ा के बोल दो, अमृत की उपमा दे दो, ऐसी बात नहीं है. वाकई ऐसा है कि अगर उस वाणी में जो रणकार है तो रणकार में अपूर्वता लग जाए तो पुरुषार्थ चालू हो जाएगा, पुरुषार्थ चालू हो जाएगा तो स्वरूप के समीप हो जाएगा और जन्म मरण का नाश हो जाएगा. इसलिए वो वचनामृत है, वो वाकई अमृत है. जैसे अमृत पीने वाला एक बूंद भी पीता है तो मरता नहीं, जबकि ऐसा कोई ड्रिंकिंग मटेरियल है ही नहीं। अमृत नाम जहर है, संसार में लिक्विड जहर है, सॉलिड जहर है और गैस्ट्रिक जहर भी है, मन प्रवाही वायु, तीनों जहर है। कोई भी जहर लो मर जाओ, जहरी गैस मार डालेगा, जहरी कोई पीना है पीने का मार, जहरी का कोई जहर का टेबलेट है अफीम है, हम मर जाऊंगा। जहर का प्रतिपक्ष कौन है? अमृत। लेकिन अमृत नाम का कोई मटेरियल है नहीं, तो फिर ये अमृत क्या चीज है? कि ज्ञानी पुरुष की वाणी अमृत है, फिर इसको कोई पीता है निगलता है तो जन्म मरण का उसका नाश हो जाता है, ये वास्तव में अमृत है। बाकी कोई अमृत अमृत है ही नहीं। उसी प्रकार से द्रव्य दृष्टि और स्वरूप भावना से प्रवाहित हुए आचार्यों के और सत्पुरुषों के तीक्ष्ण वचन ये भाषा अलंकार नहीं है। कई बातें जोर से आती है आचार्यों के, आती है ज्ञानियों के, आती है सत्पुरुष के, तो कोई भाषालंकार नहीं है, परंतु उसमें शांत अमृत रस के सरोवर छलकते हैं। लेकिन नजर चाहिए, बात तो नजर की है। तो दिखाए सुधारे जी कि आचार्यों के शास्त्र जब एकांत में हम पढ़ते हैं तो आनंद की बूंद बूंद टपकती है, तो खुद को आनंद आता है। तो भीतर में आनंद की बूंद बूंद टपकती है, लेकिन वो वचनों में तो शांत रस का सरोवर छलकता है, वहां से कुछ बूंद बूंद आती है उसमें। धर्मात्मा की निर्दोष पवित्र दशा, गंभीरता वगैरह समझने के लिए गहरी दृष्टि चाहिए, ऊंडी दृष्टि, गहरी दृष्टि चाहिए। क्योंकि ऊपर ऊपर से समझ में आ जाए ऐसी चीज नहीं है। गंभीरता एक ऐसी चीज है कि जो बाहर में नहीं दिखती है और अंदर में है, उसको गंभीरता कहते हैं। बाहर में कुछ दिखे ही नहीं और अंदर में बहुत हो, उसको कहते हैं गंभीर। जैसे समुद्र गंभीर होता है तो पानी की सपाटी जितने किनारे पे हैं वही लेवल आगे भी है, लेकिन पानी कितना है आगे जाओ तो बहुत गहरा है पानी, लेकिन ऊपर से पता नहीं चले। तो बहुत रिस्क में गंभीरता तो होती है, उसको सागर वर गंभीर कहते हैं। कैसे कहते हैं? जैसा सागर गंभीर होता है ऐसा मनुष्य को भी, गंभीर मनुष्य होते हैं, ज्ञानी गंभीर होते हैं, उसकी गंभीरता को बोला जाता है। और उसका प्रत्यक्ष नमूना बेंसरी है। बेंसरी को आप देखिए, बहुत गंभीर मुद्रा में देखोगे। कैसे? बहुत गंभीर मुद्रा में। तो जो ज्ञान देखो तो बहुत गहरा है उसमें, तो समझ देखो, जाति स्मरण ज्ञान, लब्धि वाला ज्ञान, यहाँ से उपयोग महाविदिक क्षेत्र में चला जाए और दूर दूर के जो क्षेत्र है जहाँ जिनालय है, जिन प्रतिमाएं हैं, ये सब देखते थे वो, लब्धि थी, बोले बहुत कम, बहुत कम बोलते थे, इसमें गंभीर थे वो, पता ही नहीं चले कितना ज्ञान होगा, कितना ज्ञान होगा। ऐसी परिस्थिति को गंभीरता बोलने में आती है। हाँ, वो भी गंभीरता है। तो भीतर में सर्वज्ञ स्वभावी परमात्मा है, उस पर अपनी दृष्टि ने कब्जा कर लिया है और केवल ज्ञान की लब्धि उत्पन्न हो गई, फिर भी बाहर में सामान्य मनुष्य की तरह व्यवहार करते हैं, बोलते हैं, चालते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हंसते हैं और कभी रोते भी है,
हंसाते भी है, कभी हंसाते भी है,
हाँ कुछ भी, तो भी अंदर में बात दूसरी होती है, पता नहीं चलता कि इतने परमात्मा स्वरूप के धनी है हो गए हैं अंदर में, तो पता नहीं चलता। तो गंभीरता है इसकी, धर्मात्मा की निर्दोष पवित्र दशा गंभीरता समझने के लिए गहरी दृष्टि चाहिए। उसमें भी कृपालु देव की सरलता और नम्रता तो अति स्तुति करने योग्य है। उनकी जो सरलता है, सामान्य मुमुक्षु को भी अपनी दशा लिख देते हैं और उसमें राग द्वेष होता है वो भी लिख देते हैं और उसमें अध्यात्म जो परिणति वो भी लिख देते हैं। बहुत सरल, मतलब बहुत सरल। हमारे यहाँ तो कोई भी आदमी अपनी पूंजी किसी को नहीं बताएगा, बताएगा कोई? हाँ, मेरे पास 1 लाख है या 25 लाख है या 50 लाख है या कुछ नहीं है, कोई नहीं बताएगा। ज्ञानी अपनी संपत्ति बता देते हैं कि हमारे ये परिणाम चल, और उसमें गड़बड़ है वो भी बता देते हैं। उसको ये नहीं लगता कि मेरी इज्जत चली जाएगी, मेरे को ज्ञानी नहीं मानेंगे तो, और कोई बात नहीं है। कितने सरल थे, उनको पत्र में उतना आया है। उनकी सरलता और नम्रता, कितनी नम्रता, मनुष्यों को लिखते हैं कि मेरे मन से, वचन से, काया से आपको कोई असाधना हुई, अभिनय हुआ, असमाधि हुई, मैंने दुख हुआ, पुनः पुनः मैं क्षमा याचना करता हूँ। बहुत नम्र थे, बहुत नम्र थे।
हाँ,
ज्ञाने का जो भक्ति करता है तो उसकी दासानुदास रूप भक्ति उनको मिलती है। हाँ, और विषमता मैंने तो मानवपान का विकल्प नहीं होता है विषमता मैंने। और ये लिखते हैं मार्गानुसारी, मार्गानुसारी के लिए क्या लिखा
187
के उसका चरण सेवन करिए करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्ञानी की भक्ति करते हैं इसलिए। खुद ज्ञानी है और ज्ञानी की भक्ति करने वाले का ज्ञानी चरण सेवन की बात करते हैं। पूरा सर्किट पूरा हो गया कि नहीं है? इलेक्ट्रिसिटी में सर्किट पूरा होता है तो लाइट होती है। बल्ब कब जलता है? बटन दबाने से सर्किट पूरी होती है। जो ज्ञानी करते हैं वो अनुसरण करो और क्या है। दूसरा, किसी को भी संताप रूप होने का स्वप्न रूप से भी विचार नहीं होता कि किसी को हम दुख पहुंचाए, ऐसा स्वप्न भी ज्ञानी को नहीं होता। जिसको दूसरे को स्वप्न संताप रूप होने का स्वप्न भी नहीं होता, संताप, संताप मैंने दुख देना, ताप, किसी को ताप लगे, त्रास लगे, संताप हो रहा है, फिर भी भ्रांति से किसी को दुख हुआ ऐसा लगे तो दासत्व भाव से क्षमा याचना करने के बाद दुख रूप कौन मानेगा? वो तो किसी को दुख पहुंचाने का सपने भी विचार नहीं करते, फिर भी भ्रांति से किसी को लग जाता है कि हमको दुख पहुंचाया तो उनका दासत्व भाव से क्षमा याचना कर लेते हैं, फिर उसको दुख रूप कैसे मानेंगे? फिर इनके लिए तो कल्पना करने का अवकाश नहीं है। उदय प्रसंग में संतों का वलन कैसा होता है इसका बोध स्वयं मिल जाता है, उदय आते ही इसका बोध मिल जाता है। ऐसा साक्षात बोध स्वरूप संतों के चरण परम भक्ति से सेवन करने योग्य है। बहुत सरल लाइन होती है, मतलब क्या है, ज्ञानियों की लाइन है, बहुत सरल।
अलौकिक सरलता
लौकिक में तो क्या है कि जो असरल होते हैं उसके साथ लौकिक जन असरल होते हैं, जो सीधा चलता है उसके साथ सीधा चलेगा, टेढ़ा चलता है उसके साथ टेढ़ा चलेगा। ज्ञानी का ऐसा नहीं है, तो टेढ़ा चलने के साथ में वाले टेढ़ा चलने के साथ में भी सीधा चलते हैं, सीधा के साथ तो सीधा सब चले लेकिन टेढ़ा के साथ वो सीधा चलते हैं, इनका अलौकिक व्यवहार है।
बोलो